एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
तेरे विश्वास है तू न फेरे दयालु यीशु मेरे। दिन रात शाम सवेरे झुकू मैं आगे तेरे विश्वास है तू न फेरे दयालु पुकार मेरे ईश्वर। एक तू मुझको आंखों में ममता लेकर तुझ तक पहुंचे पुकार मेरे ईश्वर। एक तू मुझको आंखों में ममता लेकर दिन रात शाम सवेरे झुकू मैं आगे तेरे विश्वास है तुम फेरे दयालु यीशु मेरे। डूब न जाऊं लहरों के नीचे मौत मुझको हर दम खींचे। डूब न जाऊं लहरों के नीचे मौत मुझको हर दम खींचे। समझेगा मेरे तू आंसू की भाषा सिर्फ है इतनी सी आशा। दिन रात आगे तेरे विश्वास है तुम न फेरे दयालु यीशु मेरे दिन रात शाम सवेरे झुकूं मैं आगे तेरे विश्वास है तुम न फेरे दयालु यीशु मेरे सहारा जीवन सागर का तू ही किनारा एक तेरा ही तो है सहारा जीवन सागर का तू ही किनारा गलत राहों पे कदम न बहके खुशबू बन के जीवन बहके दिन रात शाम सवेरे तेरे विश्वास है तुम न फेरे दयालु यीशु मेरे दिन रात।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हमारे मनों को खोल दे और तेरे वचनों को समझने के लिए हमें मदद कर। मेरे हर एक श्रोताओं के संग हो पिता, उन्हें तेरे वचनों से बहुतायत से आशीष दे और मेरे संग हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे ताकि मैं तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ के द्वारा तेरा वचनों को बोल सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। प्यारे श्रोताओं, आज का संवाद का शीर्षक है यीशु मसीह के पद। भविष्यवक्ता, याजक व राजा के पद अद्वितीय थे, समानतः अभिषेक के माध्यम से समर्पित सेवा करनी होती थी। इसे हम इज़राइल के इतिहास में देख सकते हैं। यह हमें पहला राजा 19:16, निर्गमन 30:30 और दूसरा सामुएल 5:3 में मिलते हैं। आने वाला मसीहा अभिषेक किया हुआ, जिसके बारे में भविष्यवाणियों ने बताया, को इन तीन पदों को ग्रहण करना था। भविष्यवक्ता, याजक एवं राजा के पदों द्वारा मसीह हमारे और परमेश्वर के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। भविष्यवक्ता मसीह हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा को घोषित करता है। याजक मसीह हमारा परमेश्वर के समक्ष प्रतिनिधित्व करता है एवं इसके विपरीत भी, और राजा मसीह अपने लोगों पर परमेश्वर का अनुग्रहकारी अधिकार का उपयोग करता है। आइए हम भविष्यवक्ता मसीह के बारे में सीखें। परमेश्वर ने मूसा को मसीह के भविष्यवक्ता के पद का खुलासा किया। मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वह उनको कह सुनाएगा। यह हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 18:18 में। मसीह के समकालीनों ने इस भविष्यवाणी को पूरा करने की मान्यता दी। हम इसे पाते हैं यूहन्ना 6:14-7:40 और प्रेरितों के काम 3:22-23 में। यीशु ने खुद को भविष्यवक्ता के रूप में संदर्भित किया। इसे हम लूका 13:33 में पाते हैं। उसने भविष्यवाणी के अधिकार से मत्ती 7:29 परमेश्वर के राज्य के सिद्धांत की घोषणा की। मत्ती 5:7 और 22:36-40 एवं भविष्य का खुलासा किया। मत्ती 24:1-51 में हम पाते हैं और लूका 19:41-44 में हम पाते हैं। उसके अवतरण से पूर्व मसीह ने बाइबल लेखकों को अपनी आत्मा से भर दिया था और उन्हें अपने दुखों एवं उसके बाद की महिमाओं के बारे में भविष्यवाणियां दी। पहला पत्रस 1:11। अपने स्वर्गारोहण के पश्चात उसने अपने लोगों के लिए स्वयं को प्रकट करना जारी रखा। शास्त्र कहता है कि वह अपने वफादार अवशेष को अपनी गवाही भविष्यवाणी की आत्मा देता है, जिसे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 12:17-19:10 में। यह प्रतिज्ञा यीशु मसीह अपने विश्वासी लोगों के लिए दिया है। आइए हम याजक मसीह के बारे में जानें। एक दिव्य शपथ ने मसीहा के याजक पद को मजबूती से स्थापित किया। यह हम पढ़ते हैं भजन संहिता 110:4 में। यहाँ लिखा है, यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा, तो मलकीजेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। मसीह हारून का वंशज का नहीं था, मलकीजेदेक के समान याजक पद का उसका अधिकार दिव्य नियुक्ति द्वारा आया था। इब्रानियों 5:6-10। उसकी याजकीय मध्यस्थता के दो चरण थे, एक संसारिक और एक स्वर्गीय। आइए हम यीशु के संसारिक याजक पद के बारे में जानें। मसीह का संसारिक याजक पद। बलिदान की वेदी पर याजक की भूमिका यीशु की संसारिक सेवकाई का प्रतीक है। याजक के पद के लिए यीशु पूर्ण रूप से योग्य था। वह वास्तव में मनुष्य था, वह उसे परमेश्वर द्वारा बुलाहट थी एवं परमेश्वर से संबंधित कार्यों में उसने भेंट और पाप बलि चढ़ाने का विशेष कार्य किया। इसे हम पढ़ते हैं इब्रानियों 5:1-10 में। याजक को बलिदान की विधि के माध्यम से प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर से मिलाना था, जो पाप की क्षतिपूर्ति के प्रावधान का प्रतिनिधित्व करता था। इसे हम पाते हैं लेविवस्ता 1:4 में, 4:29, 31-35 में और 5:10 में भी। इस प्रकार बलिदान की वेदी पर किए जाने वाले निरंतर क्षतिपूर्ति की उपलब्धता के प्रतीक थे। ये बलिदान पर्याप्त नहीं थे, ये चढ़ाने वाले को पूर्ण नहीं बना सकते थे, ना ही पापों को दूर कर सकते या एक स्वच्छ विवेक उत्पन्न कर सकते थे। इब्रानियों 10:1-9 में पाते हैं, वे बस आने वाली अच्छी चीजों की एक परछाई थे। इब्रानियों 10:1। इसे हम तुलना कर सकते हैं इब्रानियों 9:9-23 से। पुराने नियम ने कहा कि मसीहा स्वयं इन पशु बलियों का स्थान लेगा, भजन संहिता 40:6-8 तथा इब्रानियों 10:5-9। इन बलिदानों ने फिर उद्धारकर्ता मसीह की मृत्यु के स्थानापन्न कष्टों एवं क्षतिपूर्ति की ओर इशारा किया। वह परमेश्वर का मेमना हमारे लिए पाप बना, हमारे लिए श्रापित हुआ। उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, 2 कुरिन्थियों 5:21 तथा 1 कुरिन्थियों 15:3। इसलिए उसके संसारिक सेवकाई के दौरान मसीह याजक एवं बलि दोनों था। क्रूस पर उसकी मृत्यु उसके याजकीय कार्य का हिस्सा भी। गुलगता पर अपने बलिदान के पश्चात उसकी याजकीय मध्यस्थता स्वर्गीय पवित्र स्थान में केंद्रित है। आइए अब हम मसीह का स्वर्गीय याजक पद के बारे में जानें। जिस याजकीय सेवा को यीशु ने पृथ्वी पर आरंभ किया, उसे वह स्वर्ग में पूरा करता है। परमेश्वर के पीड़ित सेवक के रूप में पृथ्वी पर उसका अपमान उसे स्वर्ग में हमारा महायाजक बनने के लिए योग्य ठहराता है। इब्रानियों 2:17-18 तथा 4:15-5:2 भी। भविष्यवाणी से पता चलता है कि मसीहा परमेश्वर के सिंहासन के पास एक याजक के रूप में होगा, जकरिया 6:13। पुनर्स्थान के पश्चात अपमानित मसीह को गौरवान्वित किया गया। अब हमारा महायाजक स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और स्वर्गीय पवित्र स्थान में सेवा कर रहा है। इब्रानियों 8:12, और इसे हम तुलना करके देख सकते हैं इब्रानियों 1:3-9:24 से। मसीह ने अपने स्वर्गारोहण के तुरंत पश्चात ही मध्यस्थता का कार्य आरंभ कर दिया। मंदिर के पवित्र स्थान में धूप का ऊपर उठता बादल मसीह के गुण, प्रार्थनाओं एवं धार्मिकता का प्रतीक है, जो हमारी उपासना और प्रार्थनाओं को परमेश्वर के लिए स्वीकार्य बनाता है। धूप केवल होमबलि एवं मध्यस्थ के बीच अंतरंग संबंध को प्रकट करती है। इस प्रकार मसीह की मध्यस्थता का कार्य उसके पूर्ण क्षतिपूर्ति के बलिदान के गुणों पर आधारित है। मसीह का मध्यस्थता से उसके लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। वह उसका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इब्रानियों 7:25। क्योंकि मसीह अपने लोगों के लिए मध्यस्थता करता है, शैतान के सभी आरोपों ने अपना कानूनी आधार खो दिया है। 1 यूहन्ना 2:1, और इसे हम जकरिया 3:1 से तुलना कर सकते हैं। पौलुस ने भाषण देते हुए पूछा, कौन है जो उसे दोषी ठहराता है? फिर उसने यह आश्वासन दिया कि मसीह स्वयं परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी कर रहा है। रोमियो 8:34। मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका का पुष्टि करते हुए मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम पिता से मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह तुम्हें दे देगा। यूहन्ना 16:23। आइए अब हम राजा मसीह के बारे में पढ़ते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। भजन संहिता 103:19। यह स्वयं स्पष्ट है कि परमेश्वर का पुत्र ईश्वरत्व में से एक के रूप में संपूर्ण ब्राह्मण पर दिव्य शासन में भागीदार है। मसीह परमेश्वर मनुष्य के रूप में उन लोगों पर अपने राजपद का उपयोग करेगा जिन्होंने उसे अपना प्रभु एवं उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन, शास्त्र कहता है, सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राजदंड न्याय का है। भजन संहिता 45:6 और इब्रानियों 1:8-9। मसीह का राज्य संघर्ष के बिना स्थापित नहीं हुआ, क्योंकि यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डाले, उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। भजन संहिता 2:2-3। लेकिन उनकी योजनाएं विफल हो जाती है। परमेश्वर आदेश द्वारा मसीहा को अपने सिंहासन पर स्थापित करेगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। उसने घोषणा की है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। भजन संहिता 2:6-7 तथा इब्रानियों 1:5। वह राजा जो दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होगा, उसका नाम है यहोवा हमारी धार्मिकता। इसे हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 23:5-6 में। उसका शासन अद्वितीय है, क्योंकि वह स्वर्गीय सिंहासन पर याजक एवं राजा दोनों के रूप में कार्य करेगा। जकरिया 6:13। मरियम को जिब्राइल स्वर्गदूत ने घोषणा की कि यीशु ही मसीहाई शासक होगा, जो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। लुका 1:33। उसका शासन दो सिंहासन से चित्रित है, जो कि दो राज्यों के प्रतीक हैं। अनुग्रह का सिंहासन इब्रानियों 4:16 अनुग्रह के राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। उसकी महिमा का सिंहासन मत्ती 25:31 महिमा के राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। आइए हम पहले अनुग्रह का राज्य के विषय में पढ़े और जाने। पहले मानव के पाप करने के तुरंत बाद अनुग्रह के राज्य की स्थापना की गई या परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार अस्तित्व में आया। विश्वास के माध्यम से लोग इसके नागरिक बन सकते हैं, लेकिन यह मसीह की मृत्यु तक पूर्ण रूप से स्थापित नहीं हुआ था। जब उसने क्रूस पर पुकारा, पूरा हुआ, उद्धार की योजना के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति हुई या नई वाचा की पुष्टि की गई। इसे हम तुलना कर सकते हैं इब्रानियों 9 का 15 से 18 में। यीशु की उद्घोषणा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मरकुस 1 का 15 अनुग्रह के राज्य का प्रत्यक्ष संदर्भ था जो जल्द ही उसकी मृत्यु द्वारा स्थापित किया जाने वाला था। उद्धार के कार्य पर स्थापित ना कि सृष्टि पर, यह राज्य अपने नागरिकों को परिवर्तन नए जन्म के माध्यम से स्वीकार करता है, यीशु ने रेखित किया। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, यूहन्ना 3 का 5 और यूहन्ना 3 का 3 में यह हम बात पाते हैं। उसने इसकी वृद्धि की तुलना राई के दाने के असाधारण विकास और आटे पर खमीर के प्रभाव से की, मरकुस 4 का 22 से 31 और मत्ती 13 का 33। अनुग्रह का राज्य बाहरी दिखावे में दिखाई नहीं देता, बल्कि विश्वासियों के हृदय पर इसके प्रभाव के द्वारा। यह राज्य यीशु ने शिक्षा दी दृश्य के रूप में नहीं आता है, और लोग यह ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, लूका 17 का 20 और 21। यह इस संसार का राज्य नहीं है, उसने कहा, परंतु एक सत्य का राज्य है। मैं राजा हूँ, मैंने इसलिए जन्म लिया कि सत्य का गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है, यूहन्ना 18 का 37। पौलुस ने कहा, यह राज्य मसीह के धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद का है जो पवित्र आत्मा से होता है, जिसमें विश्वासियों को स्थानांतरित कर दिया गया है, रोमियो 14 का 17 तथा कुलुसियों 1 का 13 में हम यह बात पाते हैं। इस राज्य की स्थापना यह पुष्टि करते हुए कि बिना क्रूस के ताज नहीं है, एक अत्यंत दर्दनाक अनुभव था। दुर्भाग्य से सिंहासन के लिए यीशु का दावा निर्विरोध नहीं रहा। अपनी सुनवाई के दौरान यीशु ने सार्वजनिक रूप से पुष्टि की कि वह परमेश्वर का पुत्र एवं उसके लोगों का राजा है, लूका 23 का 3, यूहन्ना 18 का 33 से 37। गहरे अपमान, क्रूस पर मृत्यु के माध्यम से मसीह ने अनुग्रह का राज्य स्थापित किया। बाद में जल्द ही गौरवान्वित होने से उसका अपमान समाप्त हो गया। अपने स्वर्गारोहण के बाद वह स्वर्ग में याजक एवं राजा के रूप में विराजमान हुआ और पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया। आइए हम महिमा का राज्य के विषय में पढ़ें। महिमा के राज्य का प्रतिरूप रूपांतरण की पहाड़ी पर दिया गया। वहां मसीह ने अपनी महिमा में स्वयं को प्रस्तुत किया। उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया, मत्ती 17 का 2। मूसा एवं एलिया ने छुड़ाए गए लोगों का प्रतिनिधित्व किया। मूसा ने उन लोगों का प्रतिनिधित्व किया जो मसीह में मर चुके हैं और पुनर्जीवित होंगे, और एलिया उन विश्वासियों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें दूसरे आगमन पर मृत्यु का अनुभव किए बिना ले जाया जाएगा। मसीह के आगमन पर प्रलय के दुर्घटनाओं के साथ महिमा का राज्य स्थापित किया जाएगा, मत्ती 24 का 27, 30, 31, 25 का 31 और 32 में हम यह पाते हैं। न्याय के पश्चात जब मनुष्य के पुत्र का स्वर्गीय पवित्र स्थान में मध्यस्थता का कार्य समाप्त हो जाएगा, तो अति प्राचीन परमेश्वर पिता प्रभुता, महिमा और राज्य उसे प्रदान करेगा, दानियल 7 का 9, 10 और 14। तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान की ही प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। दानियल 7:27। सहस्त्राब्दी के अंत में या हजार वर्ष के बाद में जब स्वर्ग से नया यरूशलेम उतरेगा अंतत तब पृथ्वी पर महिमा का राज्य स्थापित किया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20:21 में हम इसे पढ़ते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके हम उसके अनुग्रह के राज्य के एवं दूसरे आगमन पर महिमा के राज्य के नागरिक बन सकते हैं। हमारे समक्ष असीमित संभावनाओं वाला जीवन है। मसीह जो जीवन प्रदान करता है वह असफलता और बिखरी हुई आशाओं और सपनों से भरा जीवन नहीं है, परंतु विकास का और उद्धारकर्ता के साथ सफलता पूर्वक चलने का है। यह एक ऐसा जीवन है जो वृद्धि करते वास्तविक प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम को प्रदर्शित करता है। इसे हम पाते हैं गलातियों 5:22-23 में। यह संबंधों के फल यीशु उन सभी को देता है जो अपना जीवन उसे समर्पित करते हैं। ऐसे प्रस्ताव कौन ठुकरा सकता है? हमें तो इसे लेना ही चाहिए। हमें इसे किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहिए। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमें यह अनंत जीवन देता है। आइए हम इसे स्वीकार करें। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के तले आते हैं। हम सबको ग्रहण कर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा और उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। हम सबों को तू आशीष दे और तेरे राह में चलने की मदद कर। हम सबों को तू धन्य बना और तेरे राज्य में बचाने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।